बेटा हमारा जन्म जन्मांतरों का साथ है।
अवतारी चेतना जब धरा पर आती है तब अपने साथ श्रेष्ठ आत्माओं को भी सहयोगी सहचरों के रूप में श्रेय सौभाग्य का भागीदार बनाती है।
जन्म जन्मांतरों से उनके साथ जुड़ी हुई वे आत्माएं जो उनकी सहयोगी सहचरी रही हैं, उन्हें वह फिर से संगठित करती हैं और अपने प्रयोजन को पूरा करती हैं।
भगवान राम आए तो उनके साथ वे रीछ वानरों के रूप में आईं। भगवान कृष्ण आए तब उनका साथ ग्वाल बालों ने दिया। युग निर्माण का कार्य भी बहुत बड़ा कार्य है, इसके लिए भी महान आत्माओं को अवतरित होना पड़ेगा।
वे कहते थे जैसे गोताखोर गहरे समुद्र में से बहुत मेहनत करके कुछ मोती खोज पाते हैं, वैसे ही हमने अपनी सबसे ज्यादा तप शक्ति ऊंचे स्तर की संस्कारवान दिव्य आत्माओं को अपने आंचल में समेटने में लगाए है।
बेटा हमारा तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का साथ है।
मैंने आप सबके रूप में हीरे मोती खोजे हैं व उन्हें एक सूत्र में पिरोया है।
अपने इस परिवार को उन्होंने प्रज्ञा परिवार का नाम दिया। जुलाई 1984 की अखंड ज्योति में प्री
62 पर उन्होंने लिखा है, हमें अनेक जन्मों का स्मरण है, लोगों को नहीं। जिनके साथ पूर्व जन्मों के सघन संबंध रहे हैं उन्हें संयोगवश या प्रयत्न पूर्वक हमने परिजनों के रूप में एकत्रित कर लिया है और वे जिस जिस कारण हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। इस जन्म जन्मांतरों से संग्रहित आत्मीयता के पीछे जुड़ी हुई अनेकानेक गुदगुदी उत्पन्न करने वाली घटनाएं हमें स्मरण है।
बेटा
इस हाथ के ऊपर भरोसा करना।
श्री जयंती भाई पटेल, राजनांदगांव।
संत रविदास जी के विषय में कहते हैं कि जब सब पंडितों ने उनका विरोध किया और उनके साथ भोजन करने के लिए मना कर दिया था,
तब भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी थी। जब वे सब पंडित खाना खाने बैठे तो हर किसी को अपने साथ संत रविदास बैठे दिखाई दिए।
पर इसके लिए भक्त को भी कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है।
ऐसा ही कुछ प्रसंग मेरे साथ भी घटा।
घटना का प्रारंभ सन 1968 से होता है, जब गुरुदेव को मैं जानता भी नहीं था। उन दिनों मैं गुजरात में रहता था और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी करता था।
उस समय मैं बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा था। जो दलाल हमें सरकार से अनाज, चावल, शक्कर आदि सप्लाई करता था, उसने सरकार के साथ धोखाधड़ी की। हमें माल सप्लाई करता रहा और फर्जी बिल देता रहा। इस प्रकार उसने 1,48,000 रुपये की ठगी की।
इसका पता हम लोगों को तब चला जब सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचा और सरकार की ओर से चेकिंग की गई। दलाल को जेल तो हो गई पर सरकार हम लोगों से पैसे की भरपाई की मांग करने लगी।
हम लोग 14 व्यापारी थे जिनके साथ दलाल ने धोखा किया था। फर्जी बिल देकर पैसा वसूलता रहा था।
पैसा तो हम बराबर चुकाते रहे थे, सो सरकार को इतना पैसा कहाँ से चुकाते।
मेरे हिस्से में 26,000 रुपये बैठते थे।
उस समय में वह बहुत बड़ी रकम थी।
हमने मिलकर वकील जुगत राम रावल जी को नियुक्त किया था। साल भर केस चलता रहा पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था।
हम लोग काफी परेशानी में थे।
भादो महीने की अमावस्या के दिन गुरुजी के शिष्य भाई श्री बभोगीलाल पटेल जी हमारे घर आए। जब उन्होंने हमारी समस्या जानी तो बोले कि हमारे गुरु इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपको इस संकट से उबार लेंगे। मैं अभी उन्हें पत्र लिखता हूँ। उन्होंने मेरे सामने ही पत्र लिख दिया और दो गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका हाथ में थमाया।
अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ थी। नवरात्रि में उसे पूरा करने के लिए कहा।
अंतिम दिन पूर्णाहुति के लिए आमंत्रित भी किया। ठीक 8वें दिन गुरुजी का जवाब आया।
लिखा था, बेटा चिंता न करें, आपकी परेशानी हमने जानी है। आपको बचाने के लिए हमारी शक्ति लगी हुई है।
9वें दिन पूर्णाहुति थी, मैं पत्र भी साथ में ले गया। श्री बभोगीलाल जी बड़े प्रसन्न हुए व बोले कि आपका काम हो गया समझे, आप निश्चिंत हो जाइए।
दशहरे के दिन पेपर में समाचार आ गया कि दलाल ही पूरे प्रकरण का दोषी है।
सभी 14 व्यापारी निर्दोष हैं। इस घटना से गायत्री मंत्र व पूज्य गुरुदेव में मेरा विश्वास बढ़ गया। मैंने 250 मंत्र लेखन पुस्तक लिखने का संकल्प ले लिया,
जिसे मैंने 5 साल में पूरा किया।
पर इसके बाद मेरी कड़ी परीक्षा शुरू हुई।
जिस ब्राह्मण ने मुझे पढ़ाया था उसे जब पता चला कि मैं गायत्री मंत्र लेखन कर रहा हूँ तो उसने मुझे मना किया और कहा कि बड़ी गलती कर रहे हो, इसे आज से अभी से छोड़ दो, यह ब्राह्मणों का मंत्र है।
तुम आग से खेल रहे हो,
तुम्हारी 71 पीढ़ी का सर्वनाश हो जाएगा। और भी बहुत कुछ समझाया पर मैं माना नहीं। इस पर वह बहुत नाराज हुआ और मेरे घर वालों को भड़काया।
घर वाले भी मुझे मना करने लगे।
प्रायः इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि मैं ब्राह्मण के मना करने पर भी गायत्री मंत्र लेखन क्यों कर रहा हूँ। जब मैं किसी प्रकार नहीं माना तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पत्नी बच्चे को लेकर घर से निकल गया पर मंत्र लेखन नहीं छोड़ा।
इस पर भी ब्राह्मण को संतोष नहीं हुआ। अब उसने गांव वालों को भड़काया। गांव वाले भी मेरे पीछे पड़ गए। समझाने लगे,
पर मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया।
मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। संघर्ष करते हुए लगभग 6 महीने बीत गए। इस बीच मैं बार बार गुरुजी को पत्र लिखता रहा, उनका आश्वासन पत्र मिलता रहा।
एक दिन मन में विचार आया कि गुरुजी को मैं जानता नहीं, फिर भी इतना विश्वास क्यों कर रहा हूँ। पत्नी से कहा, पता नहीं कब माहौल अनुकूल बनेगा।
मेरा विचलन देखकर पत्नी बहुत आक्रोशित हुई और बोली, खबरदार जो फिर ऐसी बात कही, जो होगा देखा जाएगा। संघर्ष करते करते साल भर बीतने को आया। भादों का महीना था, मेरे पास गुजराती में युग निर्माण योजना आती थी, उसमें छपा था कि अहमदाबाद में गुरुजी का कार्यक्रम है।
हम दोनों उस कार्यक्रम में गए।
जब हम पहुंचे, गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के बाद उन्होंने कहा, जो गायत्री परिवार के परिजन हैं वे सब रुके, बाकी सब घर जाएं।
हमें उनसे बातचीत करनी है। हम बहुत पीछे बैठे थे,
गुरुजी से प्रथम बार मिल रहे थे। जैसे ही हमने गुरुजी को प्रणाम किया, वे हमें देखते ही मानो डांटते हुए से बोले, बेटा जयंतीलाल, गांव वाले तेरा क्या बिगाड़ लेंगे जो मैं तेरे साथ हूँ।
गांव वालों से तुम इतना डरते क्यों हो? मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता।
चिंता मत करना। फिर पत्नी से बोले, बेटा तेरे को कुछ कहना है। पत्नी ने कहा, बापजी ये दुख हमारा दूर हो जाए बस। गुरुजी बोले, सब ठीक हो जाएगा। हम 3 दिन बाद प्रोग्राम पूरा करके गांव वापस गए। नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो गया था।
गुजरात में नवरात्रि में गरबा किया जाता है।
दिन हम गरबा कर रहे थे, 10:30 बजे पूर्णाहुति थी।
इतने में गांव की ही लगभग 10 साल की लड़की रुक्मिणी दूर से नाचती हुई आए और गरबी का जलता हुआ खप्पर मटके के ढक्कन जैसा बड़ा सा दिया उठा लिया। लगभग 5-7 मिनट तक उसे हाथ में उठाकर वह नाचती रही और फिर धीरे से रख दिया। वह खप्पर इतना गर्म हो जाता है कि उससे हाथ जल जाते हैं, पर वह कन्या उसे हाथ में उठाकर नाची और फिर धीरे से रख भी दिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ।
यह सब देखकर ब्राह्मण दौड़कर उसके सामने गया और प्रणाम कर कहा, भले पधारे माताजी, हमारे लिए क्या आदेश है। ब्राह्मण को देखते ही लड़की एकदम आक्रोशित होकर बोली, तुमने मेरे भक्त को बहुत दुखी किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण थर थर कांपने लगा और तुरंत मुझे बुलाया। एक लड़का मुझे पकड़ कर ले आया।
मैंने बच्ची को प्रणाम किया, तब वह बोली, बेटा मुझे माफ करना, तेरा दैख दूर करने में मुझे देरी हो गई,
आज से तेरा दुख खत्म। उसी समय वहां उपस्थित गांव के एक पटवारी बब्बू पानी ब्राह्मण ने कहा, आप माताजी हैं, इसका प्रमाण दो। कन्या बोली, तुझे क्या प्रमाण चाहिए बता। पटवारी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे हाथ में अपना हाथ दो तो मेरे हाथ में कुमकुम आ जाए तो मैं आपको माताजी मानूंगा। लड़की ने तुरंत उसके हाथ में हाथ दिया तो उसका हाथ लाल हो गया। यह देखकर उस कन्या के पिताजी उसके पांव पड़े।
कन्या ने उनकी पीठ पर थपकी दी तो पीठ पर भी कुमकुम लग गया।
इतने में वह पटवारी फिर बोला, हम गायत्री मंत्र को नहीं मानते। मेरे चाचा जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया था, उसे पुत्र नहीं हुआ, अतः विश्वास नहीं है। बच्ची ने बताया, उसने उच्चारण करने में गलती की थी इसलिए फलित नहीं हुआ। पटवारी ने कहा, सही उच्चारण कैसे होता है बताइए। तब लड़की ने सबके सामने ऊंचे स्वर में उच्चारण करके बताया। फिर मुझसे बोली, बेटा तुम्हारी मंत्र लेखन पुस्तिका ले आओ। तो मैं दौड़कर अपनी मंत्र लेखन पुस्तिका ले आया और माताजी को दी।
उन्होंने उसे अपने माथे से लगाया और जलते हुए खप्पर पर रख दी।
उसे कुछ नहीं हुआ। माताजी बोली, ये शुद्ध भावना से लिखा हुआ शुद्ध गायत्री मंत्र है, ले बेटा अपनी पुस्तिका। इस घटना के 1 माह बाद गुरुदेव स्वयं नखत्राना पधारे। वहां हमने दीक्षा ली। फिर हम अंजार गए, वहां 3 दिन का कार्यक्रम था। वहां गुरुदेव ने प्रेम से अपने पास बिठाया। मैंने कहा, गुरुदेव मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कल मैंने आपसे दीक्षा ली है। तब गुरुजी बोले, हाँ बेटा मैं तेरे लिए ही इतने दूर से आया हूँ, तेरे साथ तो मेरा जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारे जैसे बच्चे को खोजते खोजते ही मैं यहाँ तक आया हूँ,
तुम्हारे जैसे अनेकों को मैं मेरी माला के मनकों के रूप में पिरोते जा रहा हूँ, अब तुम मेरा काम करने में लग जाओ।
अपना हाथ दिखाते हुए गुरुदेव ने कहा, बेटा ये हाथ हार्ड चाम का है मगर लोहे से भी ज्यादा मजबूत है,
इस हाथ के ऊपर भरोसा करना, तू मेरा काम करना।
तेरा काम मैं करूंगा। पत्र द्वारा परिचय हुआ। बाबू भाई कापड़िया, न्यू जर्सी, अमेरिका।
1980 से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ। इससे पहले 1962 से 1968 तक मैं फिजी में रहा।
उन दिनों मैं मुंबई में रह रहा था जब मुझे गुरुदेव का हरिद्वार से एक पत्र मिला। उसके साथ बायोडेटा फॉर्म भी था।
मैंने उसे गुजराती में भरकर भेज दिया।
उसके जवाब में 1 माह बाद मुझे गायत्री उपासक की उपाधि का एक सर्टिफिकेट मिला।
कुछ दिनों बाद मुझे फिर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि आपको 24 शक्तिपीठों में से एक चुना जाता है। मैंने गुरुजी को जवाब लिखा कि अभी तो मैं नहीं आ सकता क्योंकि अभी मुझे मेरे वृद्ध पिताजी की देख घटाव भाल करनी है। भविष्य में जो भी मुझसे करते बन पड़ेगा वह मैं करूँगा।
उसके बाद पत्र व्यवहार बंद हो गया।
पर इस समय तक न तो मैं गुरुजी का नाम ही जानता था और न ही गायत्री परिवार के बारे में कुछ जानता था।
मुझे आज भी इस बात का आश्चर्य है कि उन्हें मेरा मुंबई का एड्रेस कैसे मिला।
इसके बाद 1976 में मैं हरिद्वार आया। मैं होटल में ठहरा था।
गुरुदेव से मिलने शांतिकुंज आया। उस समय उनका प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के बाद मैं गुरुजी से मिला। उन्होंने मुझे होटल से कपड़े लाने और एक रात शांतिकुंज में रुकने के लिए कहा। मैं कपड़े लेकर शांतिकुंज आ गया। गुरुजी ने सुबह यज्ञ के बाद मिलने के लिए कहा।
जब मैं उनसे मिला तो बातचीत में मैंने बताया कि मैं अमेरिका जाने की योजना बना रहा हूँ।
इस पर गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अमेरिका जाने से पहले मुझे एक पत्र जरूर लिख देना। मैंने अमेरिका जाने से पूर्व पत्र लिख दिया। 1980 में मैं अमेरिका गया। पहुँचते ही अगले ही दिन मुझे नौकरी भी मिल गई।
मैं हैरान हुआ। ऐसा लगा जैसे वे मेरा ही इंतजार कर रहे हों। 2002 में रिटायर भी हो गया। 1980 से ही मैं गायत्री परिवार के कार्यों में संलग्न हूँ। यहाँ शाखा बनाई व गुरुजी की कृपा से जो भी बन पड़ता है उनका काम करता रहता हूँ। गुरुवर के विषय में सोचता हूँ तो यही लगता है जैसे उनका हमारा जन्म जन्मांतरों का संबंध है। ऐसा आभास होता है जैसे वे हर पल हमारे साथ हैं। वो पूर्व जन्म की बहुत बड़ी भक्त थी।
भक्तिनम्मा शांतिकुंज। भक्तिनम्मा बताती हैं कि रायपुर की श्रीमती शारदा मुझसे पहले शांतिकुंज आई थी। वे नित्य प्रति परम वंदनिया माताजी के प्रत्येक कमरे का सामान साफ कर यथावत रखती, झाड़ू पोंछा करती, चादर बदलती।
उन्होंने मिशन की बहुत सेवा की। उनके अंतिम क्षणों में गुरुजी माताजी ने भी उनकी पुकार सुनी।
सन 86 में मकर संक्रांति के ठीक 7 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई। वे वशिष्ठ भवन में रहती थी। परम वंदनिया माताजी को जैसे ही खबर मिली उन्होंने उन्हें तुरंत ऊपर बुलवा लिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था।
ऊपर भी वे तीसरे दिन भी बेहोशी रहीं।
नली नाक में द्वारा उनको आहार दिया जा रहा था। मैंने देखा माताजी स्वयं उनके सिर को सहला रही हैं। उनके कपड़े आवश्यक सामान को सहेज कर रख रही हैं। मृत्यु से 3-4 दिन पहले माताजी ने यह अनुभव किया कि वे गुरुजी से मिलना चाहती हैं। उस समय जबकि गुरुदेव किसी से नहीं मिलते थे, उतरकर नीचे बीच वाली मंजिल पर आए और उनसे मिले। गुरुजी ने उन्हें फूल की एक पखुड़ी दी और कहा, जिस दिन ये सूखेगी उस दिन ये जाएंगी। शारदा अम्मा ने उनके दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया। संतोष की सांस ली और उसके तीसरे दिन प्राण त्याग दिए। उनके हाथ की मुट्ठी खोलकर देखा वह फूल की पखुड़ी सूख चुकी थी। ऐसे थे परम कृपालु गुरुदेव जो सच्चे मन से आराधना करने वाले की हर इच्छा पूर्ण करते थे। उनके शरीर छोड़ने पर माताजी ने कहा, बेटा वो पूर्व जन्म की बहुत बड़ी भक्त थी।
पूर्व जन्म में तू ऋषि कन्या थी।
डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मनराल अल्मोड़ा।
बात 1959 के उत्तरार्ध की है।
एक गोष्ठी में गुरुदेव बरेली में आत्मदानी श्री चमनलाल गौतम जी के निवास पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। हजारों परिजन ध्यानमग्न गुरुवाणी सुन रहे थे।
गुरुदेव का बोलना प्राणों को झंकृत कर देता था।
जो एक बार उनकी बात सुनता सदा के लिए उनका अनुयायी हो जाता था।
पास ही महिलाओं की कतार में एक युवती महिला ने ज्यों ही अपनी अंजलि फैलाई त्यों ही गुरुजी के चरणों के आसपास बिखरे फूल स्वयं उड़कर, वहां न पंखा था न तेज हवा का झोंका, उस महिला की अंजलि में आकर समाने लगे। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक उसकी दोनों हाथों की अंजलि फूलों से भर नहीं गई।
सारा पंडाल सांस रोके एकटक देख रहा था। मैं भी पास ही बैठा देखता रहा। शांत वातावरण में कुछ खलबली बढ़ी। गुरुदेव ने प्रवचन रोक दिया। वह महिला सकुचाती हुई अंजलि बांधे ही अपने स्थान पर खड़ी हुई। संकोच के साथ बोली, गुरुदेव जब से मैंने आपकी स्त्रियों की गायत्री उपासना पुस्तक पढ़ी तभी से मैंने गायत्री जप प्रारंभ कर दिया। पूजा के मध्य एक दिन मैं अपनी अंजलि इसी प्रकार फैला बैठी, वहां गायत्री माँ के चरणों में चढ़ाए पुष्प इसी प्रकार मेरी अंजलि में भरने लगे। मैं डर गई।
परिवार वालों ने भला बुरा कहा, स्वयं मैं भी घबरा गई, लेकिन मैंने उपासना नहीं छोड़ी। उपासना काल में जब भी मेरे दोनों हाथ अंजलि बांधते हैं फूल स्वयं भर आते हैं।
मैं क्या करूं गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करिए। गुरुदेव को हमने इतनी ध्यानमग्न मुद्रा में पहली बार देखा। फिर वे बोले, बेटी तू साधारण नारी नहीं है, पूर्व जन्म में तू ऋषि कन्या थी।
यहाँ देवशक्तियों ने तेरे माध्यम से नारियों की गायत्री उपासना की पुष्टि कर दी है। इसमें घबराना कैसा, यह अत्यंत शुभप्रद लक्षण है।
तुम अपनी उपासना जारी रखो। गुरुदेव की बात सुनकर सभी परिजन श्रद्धावन्त थे।
बाद में गुरुजी ने स्वयं वे पुष्प स्वीकार किए और एक एक पंखुड़ी वहां पर उपस्थित परिजनों को प्रसाद रूप में अपने हाथों से बांटी।
मेरे पास यह पुष्प खंड वर्षों तक सुरक्षित थे। आज भी जब हम उन साथियों से मिलते हैं जो उस दिन वहां उपस्थित थे, तो उस दृश्य की चर्चा अवश्य करते हैं। बेटा, यह पारस पत्थर है।
ओरिजोत बस्ती ऊशून्य प्रशून्य के श्री मिठाईलाल चौधरी जी बताते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की उनके जीवन में इतनी कृपा है कि उन्हें लगता है जैसे उनके सभी कार्य गुरुसत्ता ही पूरा करती है। वे कहते हैं कि सन 1977 की बात है,
एक दिन रात्रि के समय गुरुदेव मेरे पैतृक निवास ग्राम मनियारा जनपद संत कबीर नगर में स्वप्न में सफेद धोती कुर्ता एवं जैकेट पहने हुए आए। मुझे जगाया और बोले, कहां भटक गए थे? बस उसी दिन से मैं गुरुदेव का हो गया। वर्ष 1978 में गुरुदेव ने मुझे एक कागज पर अपने हाथ से गायत्री मंत्र लिखकर दिया और कहा, बेटा यह पारस पत्थर है,
इसे किसी अच्छे कार्य में प्रयुक्त करोगे तो उसका भला हो जाएगा। मैंने उसके माध्यम से बहुत से लोगों की सहायता की। गुरुजी के कहे अनुसार उसके माध्यम से बहुत से लोगों की समस्याएं दूर हुई,
बहुतों को स्वास्थ्य लाभ मिला। यह पारस पत्थर उन्होंने 14 लोगों को दिया था,
जिसमें से 12 लोगों का तो गायब हो गया। केवल मेरे पास और प्रतापगढ़ की कार्यकर्ता बहन पुष्पा मौर्या के पास अभी तक सुरक्षित है। मार्च 1994 में मैं बीमार पड़ा।
माताजी को पत्र लिखा। The 17th of March 1994 को माताजी का पत्र मिला जिसमें लिखा था, बेटा
ऑपरेशन न कराना। पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन जरूरी बताया और मैंने ऑपरेशन करा भी लिया। मेरे शरीर के 3 ऑपरेशन हुए और 2 बार सीरिंज से खींचकर मवाद निकाला गया। 23 मार्च से 12 मई 1994 तक लगभग 100 लीटर तक मवाद निकल गया होगा।
बार बार यही एहसास होता रहा कि माताजी की इच्छा के विरुद्ध ऑपरेशन कराने के चलते ही इतना कष्ट झेलना पड़ा। 20 टांके आज भी टूटे हुए हैं, पर फिर भी मैं स्वस्थ एवं प्रसन्नचित हूँ।
कितने संस्मरण गिनाऊं, बस गुरुचरणों में समर्पित हूँ और उनके कार्यों में लगा रहता हूँ।
तेरा प्राण प्रत्यावर्तन तो हो गया। श्री श्री कृष्ण अग्रवाल एवं श्रीमती सीता अग्रवाल सन 1970 में बागबहारा रायपुर में मिशन से जुड़े। सन 1972 में प्रथम बार शांतिकुंज आए और सन 1977 में स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए।
घटना सन 73 की है।
शांतिकुंज में पूज्य गुरुदेव प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चला रहे थे। विदित हो कि उस समय तक उस सत्र के लिए परिजनों द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं भेजा गया था। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं ही कुछ कार्यकर्ताओं को प्राण प्रत्यावर्तन सत्र की स्वीकृति भेजी थी।
मुझे इसी पत्र ने अधिक घनिष्ठता से जोड़ा, क्योंकि पत्र पाकर मुझे लगा कि मुझे गुरुजी याद करते हैं।
बिना आवेदन के ही स्वीकृति आ गई।
मैंने जवाब दिया कि जून में मेरी बहन कौशल्या की शादी है, उसे निपटाकर मैं तुरंत हरिद्वार आऊंगा।
विवाह से 8 दिन पूर्व मैं शादी का सामान लाने हेतु तेंदुकोना बागबहरा छत्तीसगढ़ से गोंदिया जा रहा था। रायपुर में ट्रेन बदलनी थी।
जैसे ही ट्रेन आई, धीरे हुई हड़बड़ी में मैंने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक बोगी के दरवाजे का डंडा पकड़ लिया,
किंतु भीड़ के कारण मेरा पैर पायदान तक ही पहुंच सका।
मैं एक प्रकार से लटक गया।
लटके लटके 3 बोगी जितनी दूरी तक घिसट गया। हाथ में डंडा, सामने प्लेटफॉर्म, आधा शरीर गाड़ी में, आधा प्लेटफॉर्म के नीचे।
उस हादसे को स्मरण कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ईश्वर किसी को ऐसा दिन न दिखाए, किंतु होनी तो होनी है। गाड़ी धीरे हुई।
हाथ में डंडा पकड़े हुए सारे शरीर का वजन संभाले में थक गया था।
गाड़ी अभी धीमी ही थी, पर अकल काम नहीं की।
मुझे लगा गाड़ी रुक गई और डंडा हाथ से छोड़ दिया।
मैं सीधा नीचे पांत के पास गिर पड़ा। गाड़ी धीरे धीरे सरक रही थी।
अब क्या करें?
भगवान ने सद्बुद्धि दी, प्लेटफॉर्म थोड़ा सामने की तरफ आगे निकला हुआ था, उसी बीच दुबक कर बैठ गया। पुनः 3 डब्बे के लगभग गाड़ी सरकी, फिर रुकी।
जैसे तैसे पटरी के बीच में से जाकर धीरे धीरे 2 डिब्बों के बीच के गैप तक आया। यहीं से धीरे से प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और जाकर एक डिब्बे में बैठ गया।
मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे।
कई खरोंचे आई थीं, खून बह रहा था।
उस समय रात्रि के 8 बज रहे थे। मेरी स्थिति देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब कांप क्यों रहे हैं?
क्या बात है? मैंने पूरी रामकथा सुनाई।
उन्होंने कहा, भाई साहब पूरी धोती लाल हो गई है,
ट्रेन तो गोंदिया सुबह पहुंचेगी, तब तक आपकी हालत और खराब हो जाएगी। अच्छा हो आपका कोई परिचय हो तो ब्रेक जर्नी ले लीजिए व डॉक्टर से तुरंत इलाज करा लें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं।
मुझे उनकी सलाह अच्छी लगी। मैंने ब्रेकजनी लिखवाई और ढूंढते खोजते परिचय के एक व्यापारी के घर पहुंच गया। वहां बैठा तो गद्दी खून से लाल हो गई। उन्हें अपनी स्थिति बताई व डॉक्टर हेतु पूछा।
उन्होंने कहा, अब तो देर हो गई है, सभी दवाखाने बंद हो चुके हैं,
सुबह ही कुछ व्यवस्था हो सकेगी। निराश हो मैं घर से बाहर पान की दुकान तक गया कि कुछ पूछताछ करूं।
बाहर पान वाले से चर्चा की तो वह भी सुबह की बात कहने लगा।
इतने में एक 12-14 साल का लड़का वहां आया, उसने सारी बातें सुनी।
वह बोला, दवाई तो मैं बता सकता हूं पर जलन होगी, सहना पड़ेगा। मरता क्या न करता, नहीं से तो अच्छा है जलन ही सह लिया जाए।
सोचकर कहा, आप बताइए तो सही, जितना सह पाएंगे सहेंगे। उसने पान वाले से कहा, दवाई तो तुम्हारे पास है,
कत्था और चूना मिलाकर दे दो, लगाते हैं। पान वाले ने कत्था चूना मिलाकर दिया तो मैंने बालक से कहा, आप ही लगा दीजिए। वह तैयार हो गया और सभी जगहों में लगाने लगा, हाथ, पीठ, छाती, पेट, सभी जगह लगाया।
वह दवाई लगा रहा था तो मुझे ठंडक अनुभव हो रही थी।
मैं मन ही मन सोचने लगा कि इसने तो कहा था जलन होगी पर मुझे तो ठंडक लग रही है। जब वह पैर में लगाने लगा तो मेरा नियम था, मैं पैर किसी से छुआटा नहीं था, अतः मैंने कहा, आप पैर मत छुइए, दीजिए मैं लगा लेता हूँ। उसने दवाई मुझे दे दी, मैं पैर में लगाने को झुका और जैसे ही दवा लगाया वहां मुझे तीव्र जलन हुई।
कराहते हुए मैंने सोचा कि आने वाले बालक को धन्यवाद तो दे दूं,
किंतु पैर में दवा लगाते तक जाने वह कहां रफूचक्कर हो गया।
पान वाले से पूछा, वह लड़का कहां गया? वह बोला, बाबूजी, मैंने भी नहीं देखा,
मैं तो आपके पैर की तरफ देख रहा था। अंतर्यामी अपना काम कर अंतर्ध्यान हो चुके थे पर मैं समझ न सका, ध्यान में ही नहीं आया कि यह किसी की कृपा है। दूसरे दिन गोंदिया गया,
सामान लेकर आया, विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद जब शांतिकुंज पहुंचा, गुरुजी से मिलने गया तो उन्होंने कहा, आ बेटा आ, तेरा ही इंतजार कर रहा था, अब तुझे प्राण प्रत्यावर्तन की कोई जरूरत नहीं, तेरा तो प्राण प्रत्यावर्तन मैंने पहले ही कर दिया है। बेटे, चलती ट्रेन में चढ़ने का दुस्साहस कर तूने तो पागलपन ही कर दिया।
पर पता है तेरे इस काम के लिए, तेरे पास जाने में मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तब मुझे समझ में आया कि उस रात्रि में जो बालक आकर दवाई बताया और लगाया वह और कोई नहीं, स्वयं पूज्यवर ही थे,
इसीलिए उनके हाथ से लगी दवाई ठंडक पहुंचा रही थी और जब मैंने लगाई तब जलन हुई।
मैं कृतज्ञता से भर गया,
आंखों के सामने वह सारा दृश्य घूम गया। सोचने लगा, उस रात वे न आते तो क्या होता। उसी कृतज्ञता ने मुझे पूर्ण समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बदल दिया। ऐसे ली दीक्षा। शंकरलाल शर्मा, कनाड़िया, इंदौर। खरगोन जिले के एक छोटे से गांव छेगांव में 108 कुंडिया गायत्री महायज्ञ का आयोजन था। मुझे श्री सत्यनारायण तिवारी जी ने निमंत्रण दिया कि आप आकर थोड़ी व्यवस्था देखें, क्योंकि उन्होंने मुझे केसूर में पढ़ाया था सो मैं गया।
न मेरा गुरुजी से कोई संपर्क था, न उनकी महत्ता के बारे में कुछ पता था।
रात्रि में प्रवचन शुरू हुआ।
गांव के लोगों की बड़ी भीड़ थी, लोग प्रवचन में बीड़ी भी पी रहे थे।
गुरुजी बार बार प्रवचन में कहते थे कि जिसको बीड़ी पीना हो बाहर जाकर पिए।
मैंने उन लोगों को समझाया, नहीं माने तो हमने 2-4 को उठाकर दूर पटक दिया।
यह दृश्य गुरुजी देख रहे थे। प्रवचन के बाद गुरुजी ने लीलापत शर्मा जी से कहा, इनको हमारे पास लाओ, ये बड़े काम के लोग हैं। श्री सत्यनारायण जी तिवारी ने कहा, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आपको स्वयं गुरुदेव ने बुलवाया है। मैंने उनको इनकार कर दिया कि हमको क्या लेना देना।
उन्होंने बड़ा आग्रह किया तो हम उनसे मिलने गए,
अंदर जाकर बैठ गए, न तो प्रणाम किया न सिर झुकाया। गुरुदेव से लगभग 20 मिनट बात हुई। बस रात्रि में सोते समय गुरुदेव की बड़ी विचित्र आकृति दिखाई दी। हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, हमारे सब कुसंस्कार जैसे चले गए हों। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके यज्ञ में सम्मिलित हुआ और गुरुदेव ने स्वयं दीक्षा दी।
इस प्रकार असीम प्रेम से उन्होंने हमें अपना बना लिया।
अमरकंटक शक्तिपीठ तुझे ही बनाना है। श्री लक्ष्मण अग्रवाल जी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं।
वे 1959 में पूज्य गुरुदेव से जुड़े। बात सन 1979 की है।
पूज्य गुरुदेव ने 24 तीर्थों में 24 गायत्री शक्तिपीठ बनाने का संकल्प ले लिया था। जिम्मेदारी देने हेतु परिजनों के मजबूत कंधे ढूंढे जा रहे थे।
इन्हीं दिनों की याद करते हुए श्री अग्रवाल जी कहते हैं, मुझे एक दिन दोपहर 12 बजे एक टेलीग्राम मिला।
टेलीग्राम हरिद्वार से था, जिसमें लिखा था कि फौरन हरिद्वार चले आओ। उसी दिन 1:30-2 बजे के लगभग श्री शिवप्रसाद मिश्रा जी भी हरिद्वार से पहुंचे और कहा, गुरुजी ने आपको तत्काल बुलाया है। मैं आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा, ऐसी क्या बात हो गई। टेलीग्राम भी आया व मिश्रा जी भी कह रहे हैं। चर्चा के दौरान मिश्रा जी ने बताया कि शायद गुरुजी आपसे अमरकंटक में शक्तिपीठ बनाने हेतु चर्चा करें। उन्होंने कहा है, अमरकंटक हेतु अग्रवाल जी को बुला लो, बात समझ में आई। अपना सौभाग्य मानकर हम दंपति मिश्रा जी के साथ ही रवाना हो गए। गुरुदेव तो जैसे इंतजार में ही थे। पहुंचते ही कहा, बेटा तुझे ही देख रहा था। देख, मैंने देश के 24 तीर्थों में 24 गायत्री शक्तिपीठ बनाने का निर्णय लिया है। अमरकंटक की शक्तिपीठ तू बना ले। अग्रवाल जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, गुरुजी, अमरकंटक बिलासपुर से 250-250 किलोमीटर दूर पड़ता है। मुझसे अकेले बनाना तो संभव नहीं है। पूज्यवर ने पुनः कहा, देख बेटा, अमरकंटक शक्तिपीठ बनाना तो तुझे ही है, तेरी सहायता हम करेंगे। अग्रवाल जी ने फिर कहा, गुरुजी, अमरकंटक में भवन निर्माण की सभी सामग्री नीचे पेंड्रा से ले जानी पड़ेगी, यहाँ तक कि वहाँ रेत भी नीचे से ही जाती है। हाँ, मैं अपनी ओर से 50,000 रुपये लगा सकता हूँ। इतना सुनना था कि गुरुदेव बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा
50,000 में तो तुझे कहीं और जगह जाने की जरूरत ही नहीं है,
शक्तिपीठ तू ही बनाएगा। आ, मैं तेरा तिलक करता हूँ। और गुरुजी ने श्री अग्रवाल जी का तिलक कर 100-100 के 10 नोट प्रतीक स्वरूप प्रदान किए। भारी जिम्मेदारी के साथ गुरुदेव के प्रति दृढ़ विश्वास लिए नीचे उतरे। सोचा, जिम्मेदारी दी है तो निभाएंगे भी, वही यह अटल विश्वास था। गुरुदेव द्वारा दिया गया वह नोट श्री अग्रवाल जी कहते हैं, मैं अभी तक संभाल कर रखा हूँ, और अमरकंटक का भव्य शक्तिपीठ उन्हीं के द्वारा बनाया गया। श्री अग्रवाल जी बताते हैं, सन 82 में शक्तिपीठ उद्घाटन दौरे पर मैं भी जब गुरुवर के साथ चला, तब मन में जो भी प्रश्न उभरते, समाधान उनसे प्राप्त कर लेता।
मेरी जिज्ञासा उन्हें भी अच्छी लगती, वे न केवल उत्तर देते बल्कि विस्तार से समझाते भी। मैंने पूछा, गुरुदेव, कहा जाता है कि जूठन छोड़ना पाप है, फिर भी बहुत लोग जूठन छोड़ते हैं,
ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, बेटा
आजकल अन्न हम पैसे से खरीदते हैं, इसलिए लोग उसकी तुलना पैसे से करते हैं, जूठन छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं,
किंतु यह वास्तविकता नहीं है।
पैसे से अन्न खरीदा नहीं जा सकता, अन्न धरती माता अपनी छाती चीर कर देती है।
कोई उसका अपमान करता है तो धरती माँ दुखी होती है और दूसरे जन्म में उसे अन्न के लिए तरसाती है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, गुरुदेव, वकालत करने वाले वकील झूठ सच बोलकर सही को गलत और गलत को सही ठहरा देते हैं,
यह उनका पेशा है, क्या उन्हें पाप नहीं पड़ता? इतने में एक कुत्ता लंगड़ाता हुआ बीच सड़क में कहीं से आ गया।
गुरुदेव बोले, देख बेटा, यह कुत्ता पूर्व जन्म में वकील था,
अब अपने झूठ सच का हिसाब चुकता कर रहा है, जिसका गलत किया वह पीट रहा है।
अपना भोग तो हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, अन्यथा कोई सत्कर्म ही क्यों करता। मैं मिशन का काम तो करता था पर आशानुकूल सफलता नहीं मिलती थी, सो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयत्न किया किंतु फिर भी अपने किसी परिजन को गायत्री परिवार का न बना सका। गुरुजी बोले, बेटा इससे तू क्यों दुखी होता है, इस सब की प्राप्ति के लिए भी प्रारब्ध चाहिए,
यह भी हर किसी के भाग्य में नहीं होता।
राम रावण युद्ध के बाद दोनों सेनाओं के बीच अमृत वर्षा हुई थी, वानर भालू जी उठे, राक्षस नहीं, क्योंकि वे चित पड़े थे, अर्थात वानर भालू विवेकपूर्ण बातें सुनते थे, उन्होंने विवेक का साथ दिया। दूसरा पक्ष अंधवादी था, अतः केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, भले ही वह गलत था।
तुलसी ने तभी तो कहा है,
अमृत वृष्टि भई दुहुं दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इसलिए तू अपना काम करके अपना कर्तव्य पूर्ण कर।
तू दूसरों को अच्छाई ग्रहण करने कहेगा तो तुझे स्वयं तो अच्छाई अपनानी ही पड़ेगी, इस प्रकार कम से कम तू तो सुधरा रहेगा, अन्यथा तू भी दूसरों के समान बन जाएगा।
इसलिए दुखी मत हो, अपना काम साहित्य प्रचार कर। बेटे, आज सब लोग जन शक्ति धन शक्ति तो अर्जित करते हैं, किंतु आध्यात्मिक शक्ति अर्जित नहीं करते, न ही उसका महत्व जानते हैं। यदि महत्व जानते तो उसे अर्जित करने का प्रयत्न करते। 9. लाखों का जीवन बदला।
भगवान बुद्ध के समय में एक प्रसंग आता है कि अंगुलिमाल से जब उनकी भेंट हुई तो अंगुलिमाल के जीवन में परिवर्तन आ गया, वह डाकू से भिक्षुक बन गया।
ताम्रपाली जब उनके संपर्क में आई तो वह भी अपना सर्वस्व समर्पित कर साधिका बन गई।
ऐसे ही प्रसंग पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आने पर अनेकों लोगों के साथ घटित हुए हैं।
पूज्य गुरुदेव का सान्निध्य पाकर, मार्गदर्शन पाकर, उनका साहित्य पढ़कर लोगों की मान्यताओं तक में परिवर्तन आया, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन नारी समाज के प्रति जो संकीर्ण दृष्टिकोण था उसमें आया।
लोगों ने अपने घर की बहु बेटियों को न केवल गायत्री उपासना का अधिकार ही दिया बल्कि उन्हें मिशन के कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति भी दी।
इसके साथ ही नारी समाज के प्रति आदर, सहयोग और सम्मान का भाव भी बढ़ा।
लाखों करोड़ों परिवारों में नारी समाज को श्रेष्ठ जीवन जीने का अवसर मिला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है।
जो भी गुरुदेव के संपर्क में आया, उसके चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में असाधारण परिवर्तन आता चला गया। परिजनों ने शराब, मांस आदि दुर्व्यसन एवं अन्य अनेकों दुर्गुणों को छोड़कर श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प लिया। उनके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर नाते रिश्तेदार तक दांतों तले अंगुली दबाकर रह गए कि इनके जीवन में इतना सुधार कैसे आ गया, ये तो चमत्कार ही हो गया। श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी, शांतिकुंज।
शांतिकुंज आ जाने पर मेरी ड्यूटी प्रतीक्षालय में लोगों को गुरुजी माताजी से मिलाने में लगी।
प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों के समय लोग अपने दोष दुर्गुण निःसंकोच गुरुजी के सामने प्रकट करते थे, कोई कोई लिखकर भी देते थे। किसी बहुत बड़ी गलती पर पहले वे नाराज होते, फिर बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रायश्चित भी बताते थे। जैसे जितना बड़ा गड्ढा खोदा है, उतनी ही मिट्टी लाकर भरना होगा। जितना किसी को नुकसान पहुंचाया है, शारीरिक, मानसिक या नैतिक, उससे अधिक लाभ पहुंचाना होगा। एक बार रामसुभाग सिंह नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया। वह वैगन ब्रेकर के नाम से प्रसिद्ध था, अर्थात रेल के वैगन ही लूट कर ले जाता था।
वह अपनी कमर में हमेशा दो पिस्तौल रखता था। गुरुजी से मिलने के बाद उसने हावड़ा में 108 कुंडीय यज्ञ कराया तथा कितने ही अखंड ज्योति के सदस्य केवल ध्वंस के बलबूते पर बनाए। उसने डाका डालना छोड़ दिया और सुधर गया। गुरुजी के पास जब आता तो कहता, गुरुजी मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो सब जानते हैं। तब गुरुजी कहते कि मैं यदि तेरे अंदर देखूंगा तो मुझे बहुत कुछ दिख जाएगा, इसलिए तू वही बता जिसका समाधान तू चाहता है।
उठ, मेरे साथ चल। श्री देवी सिंह तोमर, शांतिकुंज।
तोमर जी बताया करते थे कि कैसे उनके जीवन में गुरुजी के केवल एक प्रवचन से ही आमूलचूल परिवर्तन आ गया।
वे बताते थे कि मैं टेलीफोन विभाग में सुपरवाइजर था। मैं खूब मांस खाता था व शराब पीता था। एक दिन गायत्री परिवार के कुछ लोग आए व मुझसे कहा कि गुरुजी आने वाले हैं।
राजा साहब का एक महल राजगढ़ में शक्तिपीठ के लिए मिल गया है, उसको ठीक करने व सजाने के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं।
गायत्री परिवार और गुरुजी से मैं परिचित था। मैंने उन्हें 1500 रुपये दिए। उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया।
मैंने कह दिया कि मैं शराब पीकर ही आऊंगा और सचमुच में शराब पीकर ही गया।
मैंने गुरुजी का भाषण सुना। गुरुजी ने कहा, जो शराब पीता है वह अपना चरित्र सुरक्षित नहीं रख सकता। उसके लिए आत्मीयता, प्रेम, उत्तरदायित्व और परिवार कोई मायने नहीं रखते। मेरा दिमाग ठनका, मैं सामने ही बैठा था।
गुरुजी फिर बोले, जो मांस खाते हैं वे मुर्दा खाते हैं, क्योंकि जब उसे काटा जाता है तो उसके टुकड़े बिलकते हैं और उस दर्द चीत्कार के हार्मोन्स उसमें मिले होते हैं और मुर्दा तो वह हो ही जाता है। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने जो मांस खाया है, शराब पी है, उसको उंगली डालकर उल्टी कर दूं। उसके बाद मैंने कभी मांस और शराब को नहीं छुआ। जब मैं रिटायर हो गया तो एक रात 2 बजे नींद में गुरुजी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, उठ,
मेरे साथ चल। मैंने पत्नी को जगाया और कहा, अब अपन शांतिकुंज चलते हैं, और फिर हम लोग शांतिकुंज आ गए। जोरा सिंह का जीवन बदला। खीरी लखीमपुर जिले के श्री जोरा सिंह कभी एक प्रसिद्ध डाकू थे। खूब नशे आदि का सेवन भी करते थे। उनके गांव में गायत्री परिवार द्वारा एक महायज्ञ संपन्न होना था।
उनकी पत्नी ने परिजनों से निवेदन किया कि मेरे पति की शराब आदि छुड़वा दो तो बहुत कृपा होगी।
परिजनों ने उन्हें यज्ञ में आने हेतु भाव भरा निमंत्रण दिया व सपरिवार यज्ञ में आने का अनुरोध किया। जब वे पत्नी सहित यज्ञ में बैठे तो उनसे बहनों ने कहा, आपसे एक देव दक्षिणा मांग रहे हैं, कोई एक बुराई छोड़ दीजिए। उन बहनों ने आग्रह किया तो उन्होंने उस यज्ञ में शराब छोड़ने का संकल्प ले लिया।
बस एक छोटे से व्रत से उनका जीवन ही बदलता चला गया।
धीरे धीरे उन्होंने सभी दुर्गुण छोड़ दिए।
आज वे एक सरपंच की भूमिका निभाते हुए गांव वालों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं।
उनकी पत्नी मिशन की बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं। वाड़िया बापू, डाकू से संत। बरवाड़ा बाबीसी गांव के रहने वाले वाड़िया बापू इतने खूंखार डाकू थे कि पूरे सौराष्ट्र में उनका आतंक छाया हुआ था। उनके गांव में गायत्री परिवार का कार्यक्रम होने वाला था। कार्यकर्तागण कार्यक्रम के लिए चंदा मांगने डरते डरते उनके घर पहुंचे। उन्होंने हड़काकर सबको भगा दिया। वे नशे में धुत पड़े रहते थे। मांस, मदिरा आदि सभी दुर्गुण उनके अंदर थे। कार्यकर्ता एक छोटी सी पुस्तिका उनके घर में छोड़ आए। अगले दिन वह पुस्तिका जब उन्होंने पढ़ी तो उन विचारों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के पास जाकर उनसे पूज्यवर की कुछ पुस्तकें ले ली।
उन्हें जब गहराई से पढ़ने लगे तो उनके विचारों में बड़ा बदलाव आने लगा। पूज्य गुरुदेव के सौराष्ट्र दौरे में जब वे उनके संपर्क में आए तो पूरा जीवन ही बदल गया।
उन्होंने शराब, मांस आदि सब दुर्गुण छोड़ दिए और अपना जीवन पूज्यवर का कार्य करते हुए बिताने का संकल्प लिया।
आज वे अपने क्षेत्र में एक समर्पित एवं प्रतिष्ठित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। सभी उन्हें संत कहते हैं।
पूरा परिवार बदल गया।
इंदौर के डॉक्टर
आनंद ढींगरा बताते हैं कि शांति कुंज आने और माताजी से मिलने के पहले तक मेरा जीवन दिशाहीन था। मैं बिल्कुल निराश, हताश था। हमारे घर में भी नरक जैसा वातावरण था। आए दिन माता पिता के बीच लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश होता ही रहता था। माँ ने कई बार आत्महत्या का प्रयास भी किया था।
हम भाई बहन सदा इसी टेंशन में रहते कि कहीं दोनों में से किसी एक को खोना न पड़े।
मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी।
मेरी हालत यह थी कि मुझे दिन भी में आधी रोटी पचाना भी मुश्किल पड़ता था। मैं बहुत कमजोर हो गया था।
मुझे लगता था मैं शायद 6 महीने और जी पाऊंगा।
इस सब का असर मेरी पढ़ाई पर भी पड़ा था। सन 1991 में मुझे कहीं से अखंड ज्योति मिली। उसे पढ़कर मुझे लगा कि अभी उम्मीद जगाई जा सकती है।
जून 1991 में मैं एक माह के लिए शांति कुंज आया।
यहीं से मेरे जीवन में नया मोड़ आया। मुझे लगा इससे अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। मैं यहीं रह जाना चाहता था।
माताजी से मिला, मैंने कहा, माताजी, मैं यहीं आना चाहता हूँ।
मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा यहीं काम करने का मन है। माताजी ने कहा, अभी मत आओ,
पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ,
तब तुम हमारे ज्यादा काम के हो जाओगे। माताजी के इन शब्दों ने मेरे जीवन में आशीर्वाद से भी बढ़कर काम किया।
मेरा पूरा जीवन ही बदल गया।
धीरे धीरे घर में पूर्ण शांति हो गई। अगले वर्ष 12वीं कक्षा में मैंने अपने शहर में टॉप किया।
मैं माता पिता को शांति कुंज लेकर आया।
उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि आज मेरे पिताजी प्रतिदिन 8-10 घंटे मिशन का ही काम करते हैं।
मेरा घर नरक से स्वर्ग बन गया। आज मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ।
मेरा पूरा परिवार गुरुदेव का ऋणी है।
उनके अनुदानों का ऋण तो हम सर्वस्व न्यौछावर करके भी नहीं चुका सकते। बेटे, क्या छोड़ा? श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सन 59 में पहली बार बिलासपुर में 51 कुंडीय यज्ञ की घोषणा हुई। श्री छाजीवलाल शर्मा वैद्यनाथ वाले मेरे यहाँ अनुदान लेने आए। श्रद्धापूर्वक 101 रू 0 दिया। रसीद देकर उन्होंने कहा, पीला कुर्ता पहनकर यज्ञ में भाग जरूर लेना और इसके लिए कुछ गायत्री मंत्र लेखन कर लें। जानकारी पाकर मैंने 2400 मंत्र लिखे, यज्ञ में भाग लिया, अच्छा लगा, श्रद्धा बढ़ती गई। एक दिन माँ से पूछा, माँ, जीवन में गुरु बनाना आवश्यक होता है क्या? माँ ने कहा, हाँ बेटे, शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु बनाए कोई भी पुण्य कार्य करने पर वे फलदायी नहीं होते। उसी दिन मैंने मन में ठाना कि मैं आचार्य जी को गुरु बनाऊंगा और सन 70 के यज्ञ में गुरु दीक्षा ले ली, पर किसी को बताया नहीं। दुर्व्यसन छोड़ने की बात जब गुरु दक्षिणा में कही गई तब मैंने संकल्प लिया। गुरुजी ने पूछा, बेटे, क्या छोड़ा? मैंने जवाब दिया, सिगरेट व तंबाकू। इसके तत्काल बाद गुरुदेव ने एवमस्तु कहा।
मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे लगता था यह छूट नहीं सकता। इस लत को छोड़ने के लिए मैंने डॉक्टरों की मदद भी ली थी, पर सफलता नहीं मिली थी। गुरुदेव के पास से लौटने के बाद न जाने क्या हुआ, मैं तंबाकू खा ही नहीं सका और मुझे लगने लगा जैसे सिगरेट में कोई टेस्ट ही नहीं रह गया है। अतः चमत्कारिक ढंग से दोनों ही छूट गए।
मुझे आश्चर्य हुआ व गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रही। एक नए जीवन का प्रारंभ। राजेश अग्रवाल, कुरुक्षेत्र। सन 1991 में मैं जब शांति कुंज आया तब मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। सुल्तानपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए छात्रावास के दूषित वातावरण में व गलत संगति के कारण मुझ में अनेक बुराइयां जन्म लेने लगी। मेरा शारीरिक व मानसिक संतुलन बिगड़ गया। चिकित्सकों को दिखाया तो नींद की गोलियां साल भर तक खाईं। उससे क्षणिक आराम तो मिला, परंतु 24 घंटों में 16 घंटे नींद आती रहती।
किसी तरह गिरते पड़ते इंजीनियरिंग पूरी की और
R.E.C. कुरुक्षेत्र में प्रवक्ता के पद पर नौकरी मिली। सौभाग्य से उसी समय मैं शांति कुंज गुरुदेव के साहित्य से जुड़ा। एक दिन रात्रि को मुझे विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। एक तीव्र प्रकाश मेरे कमरे में उभरा, फिर उसमें परम पूज्य गुरुदेव प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे, तुम्हें मेरी योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैंने उनसे कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अपने स्वास्थ्य से लाचार हूँ। गुरुदेव बोले, उसकी चिंता मत करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर गुरुदेव चले गए। तुरंत मेरी नींद खुल गई। मैं उस समय अपने अंदर बहुत शक्ति व ताजगी महसूस कर रहा था। मैंने घड़ी देखी तो 2:03 हुए थे।
उस दिन के बाद मुझे फिर कभी नींद की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मेरा अधिकतर समय गुरुदेव का साहित्य पढ़ने एवं गुरुदेव का कार्य करने में बीतने लगा।
अब मेरा गलत चिंतन धीरे धीरे समाप्त होने लगा और दिव्यता, पवित्रता, गुरुभक्ति के अंकुर मुझ में फूटने लगे। इसी के साथ मेरी बीमारी समाप्त हो गई। ब्रह्मचर्य के प्रति अगाध श्रद्धा मेरे मन में उभरी। मुझे लगने लगा जैसे मुझसे अधिक प्रसन्न व सुखी व्यक्ति शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा हो।
यदि गुरुदेव से न जुड़ा होता तो नींद की दवा खा खाकर अब तक मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही परलोक सिधार गया होता। अब जीवन में यही इच्छा है कि गुरुदेव के विचारों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों, लोगों तक पहुंचा दिया जाए ताकि अज्ञानता के कारण मेरी जैसी दुर्गति किसी और की न हो। सीतापुर की सीता आज आपके सामने है।
उत्तर प्रदेश, सीतापुर की एक कार्यकर्ता सीता बहन, जब एक मासीय युग शिल्पी सत्र कर रही थी तो कक्षा के दौरान नारी जागरण विषय पर चर्चा चल रही थी।
किसी प्रसंग पर वह बहुत भावुक हो गईं और कहने लगी, बहन जी आज हमें अपने बारे में बताने का मन है। उन्होंने बताया कि मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते थे।
शराब, गांजा, जुआ, वेश्यागमन आदि सभी दुर्गुण उनमें थे। मेरे साथ आए दिन मारपीट करना आम बात थी।
मैं घर में कैदियों के जैसे रहती थी।
एक बार मैं कुछ बहनों के साथ शांतिकुंज आई, माताजी को अपनी व्यथा बताई। माताजी ने मुझे भस्मी दी और कहा, बेटी नियमित साधना करती रहना और चुटकी भर भस्मी को पति के भोजन अथवा जल में मिलाकर प्रार्थना करके कि इनके सब दुर्गुण दूर हों, प्रतिदिन देना। मैंने वैसा ही किया।
नियम से अपने घर में बलिवैश्व यज्ञ करती और गुरुजी माताजी का ध्यान करते हुए, मंत्र जप करते हुए ही भोजन बनाती, उसमें चुटकी भर भस्मी भी डाल देती।
माताजी के आशीर्वाद से मेरे पति में इतना सुधार आया कि उन्होंने सारे दुर्व्यसन छोड़ दिए।
वे भी मेरे साथ उपासना साधना करने लगे। पहले वे मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, अब वही मुझे गुरुदेव के कार्यों के लिए प्रेरित करने लगे। सीता बहन की आंखों से आंसू बह रहे थे।
उनकी हिचकी बंध गई।
फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, कहां जिस सीता को घर से एक कदम बाहर रखने की इजाजत नहीं मिलती थी, वहीं वह सीतापुर की सीता आज आपके सामने एक माह से शांतिकुंज में है।
देखिए माताजी के आशीर्वाद का कमाल, मेरा घर स्वर्ग बन गया।
मेरे पति ने स्वयं ही मुझे एक मासीय सत्र के लिए शांतिकुंज भेजा है। ऐसे हजारों प्रसंग हैं जो हमें अक्सर ही सुनने को मिलते हैं। न केवल गुरुजी माताजी के आशीर्वाद में बल्कि उनके साहित्य में भी वैसी ही शक्ति है कि जीवन बदल गया।
उनके विचारों को एक बार जिसने आत्मसात कर लिया उसका तो कायाकल्प ही हो गया। माताजी ने स्वप्न में व्यसन छुड़ाए। सीताराम ग्रोवर, मोदीनगर, यूपी।
मैं बहुत ही शराब पीता था।
बड़ी विस्फोटक स्थिति थी मेरी।
एक रात मैंने स्वप्न में माताजी के दर्शन किए। तब तक मैं माताजी से कभी मिला नहीं था। माताजी ने दर्शन दिया और मुझे शराब न पीने के लिए कहा और हरिद्वार आने का निर्देश दिया।
सौभाग्य से कुछ दिन बाद मैं पत्नी सहित हरिद्वार आया और शांतिकुंज पहुंचा। वहां जब मैंने माताजी के दर्शन किए तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा मुझे सपने में दिखाई दिया था।
मैं देखकर हैरान रह गया। उस दिन से मैंने शराब पीना छोड़ दिया।
अब बहुत खुश हूँ। 10 बच्चों, हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे, बेटा इस बार हम बहुत बड़ी नाव लेकर आए हैं।
तुम सब लोगों को उसमें बिठाकर पार लगा देंगे। बस तुम लोग उसमें से उतरना नहीं। तुमको कुछ नहीं करना है, केवल हमारा काम करना है।
हमारा मार्गदर्शन व संरक्षण तुम्हें सतत मिलता रहेगा।
तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। लाखों परिजनों ने पूज्य गुरुदेव के इस संरक्षण का एहसास किया है।
सिंगल कोट गाड़ी रोको, बच्चे छूट गए हैं। श्रीमती सावित्री गुप्ता, शांतिकुंज। एक बार मैं श्री रामस्वरूप अग्रवाल गंगानगर राजस्थान वाले के साथ अपनी बेटी के घर इंदौर जा रही थी। श्री अग्रवाल जी तब सावित्री ब्लॉक शांतिकुंज में निवास करते थे। गाजियाबाद स्टेशन आया तो मैंने उसे दिल्ली समझा व पानी लेने ट्रेन से उतर गई, दो बॉटल पानी भरा, इतने में गाड़ी चल दी। मैं दौड़ी, बॉटल कंधे पर थी। मैंने ट्रेन का डंडा पकड़ लिया किंतु भीड़ के मारे पैर पायदान तक न पहुंच सका, सो मैं लटकी हुई कुछ दूर तक गई।
बाद में मेरे हाथ से डंडा भी छूट गया, सो चलती ट्रेन से गिर पड़ी।
इस समय गाड़ी धीमे ही चल रही थी, फिर भी मैं जैसे ही गिरी जाने कहां से दो लड़के आए। कहा, माताजी चोट तो नहीं लगी? और जोर से गार्ड को चिल्लाए, गाड़ी रोको, बच्चे छूट गए हैं। गार्ड ने हड़बड़ा कर देखा, पूछा, कहां हैं बच्चे? और गाड़ी रोक दी।
इस बीच उन लड़कों ने मुझे उठाया और हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए तथा सबसे पीछे गार्ड के डिब्बे में लगभग उठाते हुए चढ़ा दिया।
चूंकि चलती ट्रेन से गिरी थी सो चोट तो थी ही। जैसे ही बैठी, गार्ड ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैंने इशारे से कहा, कृपया मुझे सांस लेने दें, मैं सब बताती हूँ। चढ़कर तुरंत बच्चों को धन्यवाद देने हेतु पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद शांत होकर मैंने गार्ड से सब हाल बताया। दूसरे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो गार्ड ने मुझे अपने साथियों के पास पहुंचा दिया। वे भी बहुत परेशान हो रहे थे। जब इंदौर से वापस आई तब गुरुदेव ने कहा, तू खूब परेशान किया कर,
देख के नहीं उतरा जाता क्या?
समय देखकर ही उतरा चढ़ा करो बेटा।
मुझे लगा मैंने पत्र तो डाला नहीं, पर पूज्यवर को कैसे मालूम?
मुझे लगा निश्चित ही वे दो लड़के पूज्यवर के अंश होंगे जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर गार्ड के डिब्बे पर चढ़ाया था।
तभी तुरंत पलटकर देखने पर भी वे दृष्टि से ओझल हो गए थे।
गुरुदेव का ऐसा संरक्षण पाकर मैं कृतकृत्य थी।
दुबई में करेंट से बचाया।
चेन्नई की शोभना बहिन बड़ी श्रद्धा भावना के साथ पूज्य गुरुदेव से, गायत्री परिवार से जुड़ी थी। उनके पति गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे।
वे दुबई में किसी कंपनी में काम करते थे।
वहां उन्हें एक दिन 33,000 वोल्टेज का करंट लगा। बिजली तुरंत पांव को चीरती हुई जमीन में धंस गई।
पांव में बड़ा छेद हो गया था।
तुरंत अस्पताल ले जाकर उपचार प्रारंभ हुआ। प्रत्यक्षदर्शी हतप्रभ थे।
ये करंट तो कुछ सेकंडों में जान ले लेता है, पर उनके जीवन पर आया संकट टल गया था। उनके सभी मित्र उन्हें देखने आते और कहते, आपके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसने आपको बचा लिया है। वे बोले, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, पर मेरी पत्नी गायत्री परिवार से जुड़ी है, वह कुछ न कुछ करती रहती है।
निश्चय ही उनके गुरुजी ने मुझे बचा लिया है। ज्ञातव्य है कि तत्पश्चात शोभना बहिन ने पूज्यवर की दो पुस्तकें, माई विल एंड हेरिटेज एवं सुपर साइंस ऑफ गायत्री का तमिल भाषा में अनुवाद कर अपने पैसों से छपवाया। उन पुस्तकों को जिनने भी गहराई से पढ़ा वे खोजते हुए उनके घर आने लगे और पूज्य गुरुदेव एवं गायत्री परिवार के बारे में उनसे जानकारी लेकर युग निर्माण योजना के सदस्य बनते चले गए।
बिना बताए घर से क्यों चला आया?
श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल, शांति कुंज। एक बार मैं शक्कर का कोटा लेने महासमुंद आया हुआ था। जब भी मैं महासमुंद आता तो ज्वाला प्रसाद जी से जरूर मिलता था। उस दिन उनसे मिला तो उन्होंने कहा, मैं कल शांति कुंज जा रहा हूँ, चलना हो तो तुम भी चलो।
मैंने कहा, ज्वाला जी, न तो मैंने घर में बताया है, न कपड़े लाया हूँ।
दुकान के लिए शक्कर उठाने आया हूँ।
अभी मैं कैसे जा सकता हूँ?
ज्वाला जी ने कहा, जाना है तो बहाना मत मारो।
कपड़े मेरे पहन लेना, घर में खबर मैं किसी के द्वारा करवा दूंगा।
शक्कर हेतु लाया पैसा तुम्हारे पास है ही। बात मुझे भी जच गई।
गुरुजी जिसे बुलाना चाहे उसका इंतजाम भी करते हैं।
इतने में बागबाहरा वाले श्री नरेंद्र सिंह आ गए। बात बन गई।
घर के लिए चिट्ठी दे दी।
बाकी व्यवस्था थी ही। दो दिन बाद हरिद्वार पहुंचे। श्री नरेंद्र जी घर पर चिट्ठी देना भूल गए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। कहां चले गए?
क्या बात हुई? कोई संदेश नहीं?
उनके देवर चिढ़ाने लगे, भाभी भैया तो बाबा जी बन गए, चिमटा पकड़ लिया, घर घर घूमेंगे, बस आप तो रोती रहो। माँ ने बच्चों को डांटा, क्यों भाभी को रुलाते हो? बहू को सांत्वना देती रही पर स्वयं भी परेशान थी। घर में स्थिति बड़ी दयनीय थी। इधर जब हम शांतिकुंज पहुंचकर ऊपर गुरुजी के पास पहुंचे तो पहुंचते ही उन्होंने डांट लगाई, बेटा
बिना बताए घर से क्यों चला आया?
इस प्रकार तुझे नहीं आना चाहिए। तू नहीं जानता मुझे कितनी तकलीफ हुई। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा, गुरुजी मैंने तो खबर भिजवा दी है, नरेंद्र सिंह को चिट्ठी दी है। बेटा उसने चिट्ठी नहीं दी,
घर में खबर नहीं पहुंची है।
तू आइंदा ऐसा काम कभी मत करना। मैं चुप हो गया।
गुरुजी कैसे जान गए कि घर में खबर नहीं पहुंची?
नरेंद्र सिंह ने चिट्ठी नहीं दी, उन्हें तकलीफ हुई, आधी बातें मेरे मन को मथने लगी। इधर घर आने पर पता चला कि नरेंद्र सिंह जी को चौथे दिन चिट्ठी की बात याद आई और घर जाकर कहा, भाभी मुझसे गलती हो गई, भैया 4 दिन पहले चिट्ठी दिए थे,
मैं भूल गया, वे हरिद्वार गए हैं।
यह वही समय था जब चौथे दिन हमारी गुरुजी से बात हो रही थी। मुझे महसूस हुआ कि गुरुदेव सर्वज्ञ हैं,
उनकी नजर हर तरफ रहती है।
ऑपरेशन सफल बनाया। नवाबगंज बरेली के कपड़ा व्यवसायी श्री कपूर जी गायत्री परिवार के पुराने सदस्य थे।
एक बार उन्हें फेफड़ों में काफी तकलीफ हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने एक्सरे आदि लिया तो देखा कि स्थिति बहुत खराब है,
तत्काल ऑपरेशन करना होगा। जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना शुरू किया तो अंदर की हालत देखकर उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिए।
कहा कि फेफड़े बहुत गल गए हैं, ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा।
उनकी पत्नी का पूज्यवर के ऊपर विश्वास बहुत प्रबल था, उन्होंने हिम्मत बनाए रखी,
बिल्कुल भी घबराई नहीं और पूज्यवर से प्रार्थना करती रही।
उधर ओ ती
में क्योंकि शरीर खुल चुका था अतः बाहर भेजना भी संभव नहीं था। एक डॉक्टर ने थोड़ी हिम्मत की व कहा कि हम लोग प्रयास करते हैं, संभव है सफलता मिल ही जाए।
उन्होंने पूरी सावधानी के साथ कई घंटे लगाकर ऑपरेशन किया। सबने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति सहायता करती रही। उन्हें ऑपरेशन में पूरी सफलता मिली। रोगी की जान का खतरा खत्म हुआ। सभी घर वाले ऐसा ही मानते हैं कि पूज्यवर ने ही उन्हें बचाया। उस ऑपरेशन के बाद कई वर्षों तक वे जीवित रहे व पूज्यवर का कार्य करते रहे। दिव्य सत्ता का स्मरण। रामबाबू शर्मा, इंदौर। सन 1975 के दीक्षा समारोह की विदाई के सुअवसर पर कहे गए शब्द, बेटा तू मेरा काम करना, तेरे सब काम मैं करूंगा, मेरे मानस पटल पर चिरस्थायी होकर प्रतिक्षण गुजरते रहे।
एक घटना सन 1986 की है। इंदौर के तिलक नगर में परिवार सहित रहते थे। एक रात अचानक स्वप्न आया, घर में कोई घुस आया है।
उठकर देखा बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, घबरा गए।
पत्नी अपने कमरे में गई,
देखा गुरुदेव खड़े हैं। पत्नी चरण स्पर्श करके बाहर आई। घटना सुनाई पर विश्वास तब हुआ जब कुछ महीने बाद हमारा हरिद्वार जाना हुआ। माताजी ने कहा, बिटिया पिताजी से डरना नहीं चाहिए।
बेटा तुमने दीक्षा ली है ना?
मोहाली के कार्यकर्ता श्री श्रीराम लखनपाल जी बताते हैं कि 1980 में मैं गायत्री परिवार से जुड़ा। मेरा बेटा पोलियोग्रस्त है।
1983 में जब मैं परिवार सहित शांतिकुंज आया तो बेटा 10 साल का होने पर भी हाथों और घुटनों के बल पर ही चलता था, जैसे कि 7-8 माह का बच्चा चलता है।
हमने उसका बहुत इलाज करवाया, 6-7 ऑपरेशन भी हो चुके थे। रोज गुरुजी को प्रणाम करते समय गुरुजी उस बालक को गौर से देखते। श्रीमती यशोदा बहन जी मोहाली जो हमें लेकर आई थी, प्रणाम के पश्चात रोज हमें पूछती, आपने बालक के लिए गुरुजी से बात की? हम कहते नहीं, तो वह नाराज होती और कहती गुरुजी से कहना था। वापस जाने का समय भी आ गया। विदाई में बस एक दिन शेष था। उस दिन यशोदा बहन जी बोली, आज तो आप गुरुजी से बात करके ही लौटना।
नहीं तो मैं कहूंगी, मैंने घर में बड़ों से सुना था कि गुरु से मांगा नहीं जाता, वह तो जानी जान जो जन्म जन्मांतरों के रहस्य जानता है होते हैं।
सो मैंने उनसे कहा, गुरु तो स्वयं सब जानते हैं, उनसे मांगा थोड़ी जाता है। मैं नहीं मांगता।
उन्हें जो देना होगा वे स्वयं दे देंगे। उस दिन जब हम गुरुजी के दर्शन करने गए तो गुरुजी ने स्वयं ही मुझसे पूछा, आपका बच्चा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया।
फिर गुरुजी बोले, बेटा इस बालक की चिंता मत करना,
मैं इसे पूरा ठीक तो नहीं कर सकता, पर इसे इसके पैरों पर खड़ा कर दूंगा।
एक दिन ये खूब दौड़ेगा,
अपना सब काम खुद ही करता चला जाएगा,
तुम बस मेरा काम करते रहना।
इसके कुछ महीनों बाद 1984 में मैं बालक को एक बाबाजी के पास ले गया।
उसने चंडीगढ़ हाईकोर्ट के पास ही एक गांव कैनवाला में अपना डेरा लगाया था।
मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर मेरे सहकर्मियों ने मुझ पर बहुत दबाव डाला।
उन्होंने उन बाबाजी की बहुत ख्याति सुनी थी।
कुछ संतान का मोह भी होता है।
मैं भी उसे वहां ले गया।
दूर दूर से लोग अपने अंधे अपंग बच्चों व परिजनों को लेकर आए हुए थे।
वहां हम 2 दिन रुके।
दूसरे दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और चारों ओर कर्फ्यू लग गया।
वह बाबा भी कोई ढोंगी था, शायद आतंकवादियों का ही कोई गिरोह रहा होगा। गांव वालों को बाबाजी की पोल पट्टी पता चल चुकी थी। दूसरी रात लगभग 12 o'clock बजे उन सब ने बाबाजी के डेरे को घेर कर आग लगा दी और बाबाजी के चेलों के साथ मारपीट, लाठीचार्ज, पथराव आदि करने लगे।
इधर आग तेजी से फैलने लगी और चारों ओर चीख पुकार मच गई। मैंने झट से अपने बच्चे को गेहूं के कटे खेतों में फेंका, एक कंबल ओढ़ा और आग में फंसे लोगों को पीठ पर लाद लाद कर बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाता रहा।
मेरे पैर लहू लुहान हो रहे थे।
पता नहीं कहां से मुझमें शक्ति आ गई थी।
अनेक लोगों को आग से बचाया।
बीच बीच में गांव वालों की लाठियां भी पीठ आदि पर पड़ती रहीं, पर गुरुजी रक्षा करते रहे।
दर्द का कोई खास एहसास ही नहीं हुआ,
पर इस सबके बीच मैं अपने बेटे से बिछुड़ गया था।
अब मैं पागलों के जैसे उसका नाम ले लेकर चिल्ला चिल्ला कर उसे ढूंढ रहा था।
मेरा गला बैठ गया था। लगभग 2 घंटे तक ढूंढने के बाद सुबह होने पर जब वह मिला तो मेरी जान में जान आई।
जब हम घर पहुंचे तो पत्नी कुछ घबराई हुई और परेशान सी लगी। पूछने पर पता चला कि उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब वह जप कर रही थी तो गुरुजी ने ध्यान में आकर कहा, बेटा
संकट तो बहुत बड़ा है पर घबराना नहीं,
तुमने दीक्षा ली है ना, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह बोली, पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है, गुरुजी ने किस संकट का संकेत दिया है। रात की घटना अभी भी मुझे कपा रही थी।
मैंने कहा, संकट तो आकर चला गया, और रात की सब घटना पत्नी को बताई।
उस रात गुरुजी ने ही हमारी रक्षा की थी। पत्नी को इसका आभास कराकर शायद वह विश्वास दिलाना चाहते थे कि गुरु चरणों में समर्पित होने के बाद अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है।
फिर मैं कभी किसी के पास भटकने नहीं गया।
पूज्यवर के आशीर्वाद के अनुरूप धीरे धीरे बेटे की हालत में सुधार होता गया।
वह सहारे से खड़ा होने लगा, फिर अपने पैरों पर चलने भी लगा। आज वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा है। उसकी शादी भी हो गई है और दो संतानें भी हैं।
पांचवा डॉक्टर श्री श्री कृष्ण अग्रवाल, शांति कुंज।
सन 1980 के आसपास की घटना है।
मुझे एक माह से बुखार आ रहा था। शांति कुंज के 3-4 डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया, इसके बावजूद मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा था। अंत में परेशान होकर अपनी पत्नी के हाथ एक पत्र लिखकर गुरुजी के पास भिजवाया। लिखा, गुरुजी, सादर प्रणाम।
आपके यहाँ लोग हजार की नी दूर से भी आकर अपने घर के लिए अनेक मनोकामनाएं ले जाते हैं। मैंने तो कभी आपका स्वरूप
भी इधर उधर नहीं किया,
फिर भी मैं कितना पापी हूँ जो यहाँ रहकर भी एक माह से परेशान हूँ, बुखार उतर ही नहीं रहा।
आपका पुत्र। प्रणाम के पश्चात गुरुजी उठने ही वाले थे कि मेरी पत्नी ने उन्हें पत्र दिया। गुरुजी ने पत्र पढ़ा, आश्चर्य से कहा, बेटी, एक माह से बुखार नहीं उतरा, चल मैं अभी आता हूँ। वह कमरे तक पहुँचती कि गुरुजी भी पहुँच गए और सीढ़ी चढ़ने लगे। उन्हें देखकर शांतिकुंज के अन्य कार्यकर्ता भी दौड़े।
क्या बात हो गई, गुरुजी क्यों आए हैं? गुरुजी आते ही मेरे बिस्तर के पास पहुंचकर बगल में बैठ गए और बोले, हाँ
बता, क्या क्या दवाई की बेटा? मुझे उस समय भी तेज बुखार था, बुखार में तप्त परेशान। मैं बोला, गुरुजी, मुझे आपके 4-4 डॉक्टरों ने किलो भर गोलियां खिला डाली, फिर भी कुछ आराम नहीं मिला।
इस पर गुरुजी ने कहा, तू क्यों चिंता करता है, मैं 5वां डॉक्टर आ गया हूँ ना,
तुझे अब कभी बुखार नहीं आएगा। मैंने कहा, गुरुजी, मेरा पेट भी भारी रहता है। गुरुजी का हाथ अनायास ही मेरे पेट की तरफ बढ़ा। गुरुजी ने मेरे पेट पर हाथ फिराया। उसी दिन मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। फिर उस दिन के बाद मुझे कभी बुखार नहीं आया। विपत्ति से रक्षा। एक कार्यकर्ता बहन अपने परिजनों के साथ शांतिकुंज घूमने आई।
जब सब मनसा देवी मंदिर घूमने जाने लगे तो ये भी साथ चली तो गई, पर वहाँ सीधी सीढ़ियों की चढ़ाई में जल्दी ही थक गई।
उन्होंने सबसे कहा, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, तुम लोग दर्शन करके आ जाओ। वे एकांत में अकेली बैठी थी तो कुछ मनचले लड़कों का समूह उनके निकट आया। उन्हें उनकी नीयत अच्छी नहीं लगी।
जब वे लड़के उन्हें छेड़ने के लिए और निकट आने लगे तो वे घबराईं। पर अचानक कहीं से एक कुत्ता निकल आया जो उन लड़कों को काटने के लिए दौड़ा। वे लोग बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उनके पास आने का प्रयास करते, पर वह कुत्ता तो जैसे वहां उनकी सुरक्षा के लिए ही तैनात था। उसने उन लड़कों को उनके पास नहीं फटकने दिया। जब तक उनके परिवार वाले आ नहीं गए तब तक वह कुत्ता वहीं बैठा रहा और परिवार वालों के आ जाने पर इधर उधर निकल गया।
अगले दिन जब वह बहन पूज्य गुरुदेव से मिली तो गुरुजी ने कहा, बेटा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ,
तू अकेले वहां क्यों बैठ गई थी? तब उन्हें समझ में आया कि गुरुजी ने ही उन्हें विपत्ति से बचाया था।
करंट लगने पर जीवन रक्षा। गुना के श्री सुरेश रघुवंशी उन दिनों शांतिकुंज में समयदानी कार्यकर्ता थे। वे एक कार्यक्रम में मेरठ शहर गए।
वहां जिस मकान में वे रुके थे वहां छत के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की हाई पावर लाइन किसी फैक्ट्री में जाती थी। सुबह कपड़े सुखाने के लिए वे छत पर गए।
जैसे ही उन्होंने तौलिया उछाला, जब तक वहां खड़ी उस परिवार की बहू कहती, भैया यहां कपड़े मत डालना, तब तक तो करंट लाइन ने तौलिया गीला होने के कारण उन्हें खींच लिया था। वे उस लाइन से चिपक गए। उनके सिर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। बहू चिल्लाते हुए नीचे उतरी कि शांतिकुंज वाले भैया को करंट लग गया।
घर वालों ने तुरंत लाइन ऑफ करने के लिए फैक्ट्री में फोन किया। इतने में पड़ोस की एक महिला ने उन्हें लाइन से चिपके देखा तो दौड़कर ऊपर चढ़ गई।
जैसे ही लाइन ऑफ हुई वे गिरे। वह महिला उन्हें तुरंत नीचे ले आई। जमीन पर औंधे लिटाकर लगातार मुठियां मारने लगी। आनन फानन में गाड़ी की व्यवस्था की गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया व तुरंत उपचार शुरू हुआ।
उनके सिर में गहरा घाव हो गया था।
मेरठ के सारे कार्यकर्ता एकत्र हो गए।
सभी गायत्री मंत्र जाप करते हुए उनके लिए प्रार्थना करने लगे।
वहां उस फैक्ट्री लाइन से पहले भी उस पूरी गली में 18 मौतें हो चुकी थी। ये भाई 19वें नंबर के थे जिन्हें पूज्य गुरुदेव ने बचा लिया। कार्यकर्ता खुश भी थे और गुरुसत्ता की सामर्थ्य पर हैरान भी।
उन्हें ये विश्वास हो गया था कि हमारे गुरुदेव असंभव को भी संभव कर देने में पूरी तरह समर्थ हैं।
मेरा आध्यात्मिक उपचार। अनामिका पारिक, कुरुक्षेत्र।
गुरुदेव से जुड़ने के पूर्व लगभग 30 वर्ष की आयु में ही मेरा शरीर बीमारियों का घर बना हुआ था। कभी दिल की धड़कन बढ़ जाती तो कभी पैरों में सूजन आ जाती थी।
थकान व कमजोरी के कारण बुरा हाल रहता था। मेरे पति स्वयं एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, परंतु बीमारी पर कोई इलाज कामयाब नहीं हो पाता था। अनेकों बड़े बड़े चिकित्सकों ने थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स का असंतुलन घोषित कर दिया था। अपने पति के द्वारा बारंबार कहने पर मैंने गायत्री जप शुरू किया एवं भावनापूर्वक गायत्री जप व गुरुदेव की तस्वीर रखकर ध्यान करना आरंभ कर दिया। एक दिन मुझे अनुभूति हुई जैसे गुरुदेव कह रहे हों, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा आध्यात्मिक उपचार करेंगे। उस दिन के बाद मैंने महिला सत्संग व झोला पुस्तकालय चलाना आरंभ किया और कुछ ही दिनों में मेरी बीमारी गायब हो गई। 11. जिसने जो मांगा वो पाया। पूज्य गुरुदेव माताजी दोनों एक ही थे। परम पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर छोड़ने के बाद उनकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारियां माताजी के कंधों पर आ गईं।
उस समय उनके पास रहने वाले परिजन बताते हैं कि माताजी ने पूज्य गुरुदेव की कमी का एहसास नहीं होने दिया। उनमें पूज्य गुरुदेव की समस्त शक्तियां प्रारंभ से ही विद्यमान थीं, परंतु गुरुदेव के रहते तक उन्होंने इसका खास एहसास नहीं होने दिया। स्वयं को उनकी आड़ में छिपाए रखा। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर परिजनों को उन्होंने उनका आभास भी कराया है,
परंतु गुरुदेव के सूक्ष्म में विलीन होने के पश्चात तो वे स्पष्ट रूप से सामने आईं।
परिजनों को उन्होंने एहसास कराया कि वे गुरुदेव से भिन्न नहीं हैं। अर्धनारी नटेश्वर की तरह वे और गुरुदेव दोनों एक ही हैं। जो भी उनके पास आया वह निहाल हो गया।
किसी को उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया। अधिकतर लोग उनसे लौकिक चीजें ही मांगते रहे,
जिस पर वे कभी कभी खेद भी प्रकट करते थे।
कहते कि मैं तो कठिन तप से कमाई आध्यात्मिक विभूतियां देना चाहता हूं, पर हमारे बच्चे अभी तक बच्चे ही बने हुए हैं,
लौकिक चीजें ही मांगते हैं, यह सब तो मेरे लिए टॉफी चॉकलेट बांटने के समान है।
इसके अतिरिक्त किसी ने उनसे विद्या मांगी, किसी ने भक्ति, किसी ने पवित्रता तो किसी ने शक्ति भी। कोई कोई भक्त तो शबरी नरसिंह मेहता की नाई उन्हें साक्षात भगवान मानते ही नहीं रहे, अपितु दृढ़ विश्वास भी करते रहे। उन्होंने जब उनके दर्शनों की इच्छा की तो पूज्यवर ने उन्हें अपना स्वरूप भी दिखाया। जिसने जो मांगा वो पाया। उनके विषय में बस यही कहा जा सकता है, तेरे दरबार की गुरुवर निराली शान यह देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। बायना खुंडी तो भरना ही पड़ेगा। श्री शिव प्रसाद मिश्र, शांति कुंज। श्री रघुवीर सिंह चौहान जी की बड़ी लड़की की शादी तय हो चुकी थी।
चूंकि श्री चौहान जी मेरे साथ ही गुरुदेव व वंदनिया माताजी से परिजनों को मिलाने के कार्य में व्यस्त रहते थे, अतः हम लोग प्रायः ही उनसे पूछते रहते।
चौहान जी, लड़की की शादी की तैयारी हो गई। वे कहते, सब गुरुजी ठीक करेंगे। शादी में मात्र 2 माह का समय था। जब भी पूछते उनका एक ही जवाब होता, सब गुरुजी ठीक करेंगे। अब शादी में मात्र 4-5 दिन ही बचे थे।
चौहान जी पूर्ववत ही अपने कार्य में लगे रहते। शादी की तैयारियों की बाबत पूछने पर अब भी उनका यही जवाब था,
सब गुरुजी ठीक करेंगे। मैं किसी कार्यवश ज्वालापुर गया, अकस्मात ही उनके घर पर नजर पड़ी।
देखा, अरे घर तो ज्यों का त्यों पड़ा है,
न लिपाई पुताई न रंग रोगन। 4 दिन बाद शादी है, लेकिन उसके एक भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे। मुझे चिंता हुई, आकर अन्य भाई बहनों से चर्चा की। सोचा, अब गुरुजी माताजी से कहे बिना काम नहीं चलेगा। उस दिन भी चौहान जी से जब पूछा तो जवाब वही का वही। अब शादी में केवल 3 दिन शेष थे।
मैंने पूज्य गुरुदेव से सब बात बताई।
गुरुजी ने सारी बात सुनी, थोड़े गंभीर हुए, फिर बोले, बेटा बायना तो भरना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि कहीं ये पूर्व जन्म के नरसिंह मेहता तो नहीं है जो अपने कृष्ण को हुंडी चुकाने को विवश कर रहे हैं। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। मैं अभी सोच ही रहा था कि पूज्यवर का आदेश हो गया, बेटा तू देख, सारी व्यवस्था कर। मैंने नीचे आकर परम वंदनिया माताजी से परामर्श किया, उन्होंने भी सारी व्यवस्था हेतु स्वीकृति दे दी और अन्य परिजनों को भी सहयोग करने के लिए कहा। हमने चौके से बर्तन आदि सभी आवश्यक सामग्री मेटाडो में भरी और कुछ भाई बहनों को साथ लेकर चौहान जी के घर पहुंचे। सावित्री जीजी चौके वाली कुछ बहनों को साथ लेकर गईं। उन सबने लिपाई पुताई से लेकर चौके की पूरी व्यवस्था संभाली, क्योंकि बारात बहादुराबाद से ही आनी थी, सो कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी इसका पहले से ही अंदाजा ले लिया जाए। यह सोचकर मैं संधी जी के यहाँ बहादुराबाद चला गया। देखा तो मेरे नेत्र खुले के खुले रह गए। वे गाँव के मान्य ठाकुर थे। गांव भर में उत्सव का माहौल था। वे उस समय पूरे गांव को खाना खिला रहे थे। मैं कुछ देर रुका, फिर बात ही बात में पूछा, कितनी बारात जाएगी? उत्तर मिला, पूरा गांव तैयार है, 1000 तो हो ही जाएंगे। सुनकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। निवेदन किया,
यह तो बहुत ज्यादा है,
आपके समधी शायद संभाल न सकें।
कृपया उन पर इतना बोझ न डालें। कुछ आदर्श की भी बात की।
वे पहले 500, फिर 300, अंततः बड़ी मुश्किल से 150 के लिए तैयार हुए। पर फिर भी 300 बाराती हो ही गए थे। शायद इससे अधिक उनको भी नकारते न बन पड़ा हो। ज्वालापुर आकर मैं किराना सामान लेने गया।
यह सन 77-78 की बात है।
उस समय मैं 1345 रू का किराने का सामान लाया। मिठाई गिनकर 200 पीस से कुछ ऊपर ही लिया था। 300 बराती आए और लगभग 300 ही घरती हो गए। सावित्री जीजी, भारती अम्मा के जिम्मे चौके की सब व्यवस्था थी। फिर भी इतनी बड़ी व्यवस्था में जिससे जो बना पूरा सहयोग किया। श्री महेंद्र शर्मा जी ने पूरी तली। श्री राम सहाय शुक्ला जी व मैं भी जो हाथ आया वही काम किया। 3 दिन के अंदर सब तैयारियां और व्यवस्था देखकर मोहल्ले वासी भी हैरान रह गए।
सबके मुंह पर एक ही बात थी कि लक्ष्मी माँ का काम फटाफट होते सुना था, पर देखा आज ही है। मैं खुद आश्चर्य में था कि मैं जो किराना सामान लाया था उसी में सब व्यवस्था कैसे पूरी हो गई।
बारात की विदाई के बाद भी पूरी सब्जी लड्डू आदि बहुत बचा था।
मानो माताजी स्वयं इसे पूर्ण करने आई थी।
मिठाई तो मैं गिनकर लाया था
200, पर 600 लोगों में कैसे पूरी हो गई मैं हैरान था।
चौहान जी की भक्ति और गुरुवर की शक्ति के आगे हम सब नतमस्तक थे। लड़की जब ससुराल गई और यहाँ की बातें वहां तक पहुंची तो उसे चमत्कारी लड़की मानकर 6 माह तक दूर दूर से लोग उसे देखने आते रहे। इस प्रकार निष्ठा ने विजय पाई। भगवान को भक्त का बायना भरना पड़ा। उनसे तो कहना भर ही काफी था। श्री सुदर्शन मित्तल जी, देहरादून। मैं अक्सर मथुरा आता जाता रहता हूँ। श्री द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी से मेरी खूब बातचीत होती रहती है।
एक दिन उन्होंने बताया कि जब मैं नया नया मथुरा आया था तो एक दिन मैंने बातों बातों में गुरुदेव से कह दिया, गुरुदेव मुझे केवल लड़की के विवाह की चिंता है।
पूज्यवर ने तुरंत कहा, बेटा तू क्यों चिंता करता है, तेरी लड़की मेरी लड़की है, तू बिल्कुल भी चिंता न कर। चैतन्य जी ने बताया कि उसके बाद मैं निश्चिंत हो गया।
बात आई गई हो गई।
समय पर अचानक एक दिन एक लड़का आया, उसने एक चिट्ठी दी। मैंने खोलकर पढ़ी, पूज्यवर ने लिखा था, मैंने तो तिलक कर दिया है, तू लड़का देख ले।
चिट्ठी पढ़कर मैं हैरान रह गया।
लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा, तुरंत तिलक कर गुरुदेव ने भेजा था सो ओजस चेहरे पर झलक रहा था, किंतु बिना उसके बारे में कुछ भी जाने समझे अपनी लड़की के लिए कैसे हाँ कर दूं, अजीब स्थिति हो गई थी। फिर भी लड़के को बिठाया, बातचीत किया,
अंदर गया, घर में चर्चा की, वह दोनों एक दूसरे का पता लेकर एक दूसरे के गृह ग्राम गए। दोनों ने दोनों को पसंद किया, बात तय हुई। इसी बीच लड़के के मामा ने विवाह की लिस्ट दी, जिसे मैंने मना कर दिया, कहा मैं इतना सामान नहीं दे सकता। अब तो उनके घर वाले सकते में आ गए। गुरुजी ने तिलक किया है, मना कैसे करते।
अतः कहा, गुरुजी गोत्र समान है,
कहते हैं ऐसे में दोनों की एक दूसरे से पत्ती नहीं। बहाना तो बहाना था। गुरुदेव ने उसी लहजे में लड़के से पूछा, ये लड़की मेरी है, मेरा गोत्र चमार है, तू बता शादी करेगा। लड़के ने हाँ कर दी व शादी धूमधाम से हो गई।
बाद में चैतन्य जी अंतर्मन से भाव विभोर होकर कहते हैं, मित्तल जी मैं अगर खोजता तो कितना भी खोजता किंतु मुझे ऐसा लड़का कदापि नहीं मिलता। यह तो गुरुवर की असीम कृपा है जिन्होंने मुझे इतना अच्छा दामाद प्रदान किया।
तुझे कुछ नहीं हुआ है बेटी।
श्री सुदर्शन मित्तल जी, देहरादून। घटना सन 1958 के ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान यज्ञ के पहले की है। आगरा के अंदर एक खान एसपी थे, उनकी पत्नी असाध्य बीमारी से पीड़ित थी। उन्हें एक कार्यकर्ता श्री फौजदार सिंह जी से गुरुजी के विषय में जानकारी मिली तो उन्होंने कहलवाया, क्या मैं अपनी पत्नी को ला सकता हूँ। फौजदार सिंह जी ने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कह दिया, ले आना बेटा। दूसरे दिन वे अपनी गाड़ी से पत्नी को लेकर आए।
गुरुदेव आंगन में ही दोनों हाथ पीछे बांधे टहल रहे थे।
उसी मुद्रा में कहा, उतार कर ले आ बेटा। खान साहब ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया और गाड़ी से नीचे ले आए।
गुरुदेव ने उन्हें इशारे से ही मंदिर में ले जाने व गायत्री माता के समक्ष बरामदे में सुलाने को कहा व स्वयं कमर में हाथ बांधे हुए उन्हीं के पीछे पीछे चलते हुए कहते रहे, तुम मेरी अच्छी बेटी हो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, उठकर बैठ जा, देख धीरे धीरे बैठना। देखते देखते ही वह महिला अपने मन से उठने लगी व बैठ गई।
गुरुदेव ने कहा, खड़ी हो जा, धीरे धीरे खड़ी होना। तो वह धीरे धीरे खड़ी हो गई।
उन्होंने कहा, अब चलकर अपने पिता के पास नहीं आएगी। इतना कहने पर वह धीरे धीरे पिताजी अर्थात गुरुजी के पास आ गई।
अब गुरुजी ने कहा, कुछ खाएगी। उस महिला ने जवाब दिया, हाँ खाऊंगी। खान साहब ने उसे बोलते सुना तो दंग रह गए।
वैसी आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। उसके स्वास्थ्य में एकाएक कितना सुधार देखकर खान साहब हैरान रह गए व गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। वह पत्नी जिसके रोग को डॉक्टरों ने असाध्य घोषित कर दिया हो, उसे तुझे कुछ नहीं हुआ है बेटी कहकर आधे घंटे से भी कम समय में उठाकर बैठा दें, खड़ा कर दें व खिला कर घर भेज दें। ऐसे सिद्ध संत के चरणों में भला कौन नतमस्तक नहीं होगा। खान साहब मन ही मन कृतज्ञ होकर जिस पत्नी को गोद में लाद कर लाए थे उसे अपने पैरों चलाते हुए लेकर चले गए।
मांगो, क्या मांगते हो? राजनांदगांव शहर के बाबूभाई मानिक की अनुभूति उल्लेखनीय है।
उन्होंने बताया कि उन्हें संतान नहीं थी।
गुरुजी हमारे घर में आए तो उन्होंने भोजन करते हुए पूछा, क्यों बाबूभाई?
तुम्हें संतान नहीं है। मैंने कहा, नहीं गुरुजी। तो पूछा, तुम्हें कामना भी नहीं है? मैं बोला, नहीं गुरुजी, अब हम